ओम शांति। योग की यथार्थ विधि और सिद्धि। इस संसार में सबसे भाग्यशाली आत्माएं हैं योगी आत्माएं। जितने भी भाग्यशाली लोग हैं दुनिया में, उन सबसे बढ़कर योगी आत्माएं भाग्यशाली हैं। कैसे? जो भाग्य योगी आत्माओं को प्राप्त होता है वो किसी को नहीं होता है। तो योगी आत्माएं न केवल परमात्मा के नयनों के सामने रहते हैं, लेकिन परमात्मा के नयनों में समाकर परमात्मा के नयनों का नूर बनते हैं। इस सबसे ऊंचा भाग्य इस संसार में भगवान के नयनों के पलकों में पलना, इससे ऊंचा भाग्य इस संसार में नहीं है। और वो केवल योगी आत्माओं को ही प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि योगी आत्माओं के नयनों में स्वयं परमात्मा समाये रहते हैं नूर बनकर। तो जिनके नयनों का नूर स्वयं भगवान होता है, वो भगवान के नयनों का नूर बनते हैं। जितनी शास्त्रों में भगवान की महिमा की है, योगियों के महिमाओं से शास्त्र भरे पड़े हैं। क्यों? क्योंकि जैसे परमात्मा इस संसार के पालनहार कहलाते हैं, योगी आत्माएं मास्टर पालनहार बनकर परमात्मा से खजाने लेते रहते हैं और सारे संसार की आत्माओं को बांटते रहते हैं और उनकी पालना करते रहते हैं। मास्टर भगवान का टाइटल उनको मिलता है। संगम युग में वरदानों के सागर बाबा हमें अनेक वरदान देते हैं, लेकिन सबसे बढ़कर नंबर वन वरदान है योगी भव का वरदान। कहते हैं हाथी के पैर में सबके पैर होते हैं। ऐसे जिनको योगी भव का वरदान प्राप्त होता है, उनको अन्य सभी वरदान स्वतः ही प्राप्त होते हैं। तो संगम युग में हमारा दृढ़ संकल्प हो कि मुझे योगी भव का वरदान पाना ही है। हम सभी विश्व विद्यालय में, यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। चार सब्जेक्ट हमें परमात्मा पढ़ाते हैं और इन सभी में मुख्य सब्जेक्ट है योग का। योगी आत्माएं इस यूनिवर्सिटी के टॉपर्स होंगे, चैंपियंस होंगे, स्कॉलर्स होंगे। जितना ज्ञान बुद्धि में बैठता है उतना योग बढ़ता है। जितनी धारणा हम करते हैं दिव्य गुणों की, उतना योग और सरल होता है। जितनी हम सेवा करते हैं, अनेकों की दुआएं प्राप्त करते हैं, उतना योग और बढ़ता है। और हमारी जो रेस है वो योग में है। वर्ल्ड वाइड रेस हमारी केवल योग में है। तो इस रेस में हमें केवल रनर नहीं बनना है। रनर तो आम संसार, ब्राह्मण संसार है, मुझे विनर बनना है। ऐसा दृढ़ संकल्प हमारा सदा हो। और योग का सब्जेक्ट हमें बहुत सहज अनुभव हो और वो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट हो। मेजॉरिटी ब्राह्मण आत्माओं को योग का सब्जेक्ट कठिन लगता है, जबकि उसका नाम है सहज राज योग, लेकिन कठिन लग रहा है। क्यों भाई? उसके दो कारण हो सकते हैं। पहला कारण, योग की यथार्थ विधि मुझे पता नहीं है। दूसरा कारण हो सकता है, यथार्थ विधि पता होने के बाद जितनी मेहनत मुझे करनी है वो मैं नहीं कर रहा हूं, इसलिए योग मुझे कठिन लग रहा है। तो आज हम ऐसी बातें कुछ आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिससे योगाभ्यास आपको सदा सरल अनुभव होगा। मुरली में बाबा क्या कहते हैं, मीठे बच्चे स्वयं को आत्मा समझ, मोज बाप को याद करो। तीन बातें इसमें हैं, स्वयं को आत्मा समझना, परमात्मा को यथार्थ रीति से समझना और परमात्मा के साथ यथार्थ कनेक्शन जोड़ना। इन तीनों बातों को अगर हम अच्छी तरह से समझते हैं तो योगाभ्यास में हमारी मास्टरी हो सकती है। तो सबसे पहली बात, आत्मा को अनुभव करने की यथार्थ विधि क्या है? विधि अगर यथार्थ होगी तो सिद्धियां अर्थात उनकी शक्तियां, उनकी उपलब्धियां, उनकी विशेषताएं सारे हमें अपने जीवन में अनुभव होने लगते हैं। तो आत्मा को अनुभव करने की विधि बड़ी सरल है। सबसे पहले आत्मा को हमें दिव्य नेत्र से देखना होगा। जब तक आत्मा को देखते नहीं है तब तक आत्मा की अनुभूति नहीं हो सकती है। देखेंगे कैसे? इन स्थूल आंखों से चेहरा आईने में हम देखते हैं। आत्मा को देखने के लिए आत्मा की आंख से ही हम देख सकते हैं। बाबा ने हमें बर्थडे की गिफ्ट दी है ज्ञान चक्षु बुद्धि रूपी नेत्र, दिव्य नेत्र, लेकिन वो नेत्र कहां है, कौन सा है, क्लियर आइडिया नहीं है। आपका क्लियर पिक्चर मैं देना चाहता हूं, क्योंकि आत्मा एक शक्तियों का पुंज है। आत्मा समझने के बाद कौन सी शक्ति मन है और कौन सी शक्ति बुद्धि है, इसमें मेजॉरिटी का कंफ्यूजन होता है, इसके लिए योग कठिन लगता है। मैं आपको दो प्रश्न पूछता हूं। पहला प्रश्न, क्या आपने सरला दीदी जी जो गुजरात की जोनल इंचार्ज थी उनको देखा है? बोलो, देखा है? दिखाई दे रहा है उनका पिक्चर, उनका फोटो दिखाई दे रहा है? आप मुझे देख रहे हैं लेकिन उनका तस्वीर दिखाई दे रही है। दूसरा प्रश्न पूछ रहा हूं, दीदी जी की कुछ विशेषताएं बताइए, जल्दी बताओ, कोई भी बताओ। सरल नेचर था, अथक सेवाधारी थी दीदी, दृढ़ निश्चय वाली थी, योगी जीवन था। अभी भारती दीदी कहती है कर्म योगी थी दीदी, नेचुरल पुरुषार्थ। अभी देखो, पहला प्रश्न पूछा, दीदी को देखा है तो कोई शक्ति दीदी जी को देख रही थी, वो है बुद्धि रूपी नेत्र। और दूसरा प्रश्न पूछा, दीदी जी की विशेषताएं बताओ, तो एक एक विशेषता आप सोच सोच कर मुझे बताई थी, वो था मन। तो एकांत में बैठकर हमें अनुभव करना है। ये आत्मा की देखने वाली शक्ति बुद्धि रूपी नेत्र हैं और सोचने वाली शक्ति मन है। बस योग आपको सरल हो जाएगा सदा के लिए। ठीक है, अभी विधि क्या है? एकांत में बैठकर हमें आत्मा को देखना है। मैं कौन हूं? मैं एक अजीब सितारा हूं और गजब का सितारा हूं। अजीब सितारा क्यों हूं? क्योंकि आसमान के सितारे तो इन आंखों से दिखाई देते हैं, लेकिन ये जो दिव्य सितारा है उसको देखने के लिए दिव्य नेत्र ही चाहिए। इसलिए अजीब सितारा हूं। और गजब का सितारा क्यों हूं? क्योंकि छोटे से सितारे में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है जो कभी मिटता नहीं, कभी घिसता नहीं। इसलिए कैसा हूं? गजब का सितारा हूं। ठीक है, तो देखो, स्पष्ट देखो, मैं ये चमकता हुआ स्टार हूं, दिव्य सितारा हूं। फिर कैसा सितारा हूं? फिर शांत स्वरूप हूं, प्रेम स्वरूप हूं, आनंद स्वरूप हूं। एक एक गुण का अनुभव करना है, उसमें स्थित होना है, उसका अनुभव करना है। इसमें दो बातें हैं, देखने का परसेंटेज को हमें बढ़ाना है दिन प्रतिदिन, और उसमें स्थित होने के समय को बढ़ाना है। हमारा लक्ष्य क्या है? संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति की अनुभूति करना, अर्थात 100% आत्मा का भान हो, 0% देह का भान हो, और निरंतर उस स्थिति में स्थित रहे। यह है संपूर्ण आत्म अभिमानी स्थिति। ठीक है, तो जैसे हम आत्मा अनुभव करते हैं तो आत्मा का जो प्रकाश है, आत्मा का जो ऑरा है, आत्मा का जो आभा मंडल है, धीरे 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 विशाल बनता जाता है। जैसी स्थिति वैसी उपस्थिति होती है। यहां अभी गुलजार दादी जी हॉल में आते हैं, आते ही हॉल का माहौल बदल जाता है। क्यों? क्योंकि आते ही उनका ऑरा काम करने लगता है। तो हमें क्या करना है? आत्मा का अनुभव करते 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 उसके आभा मंडल को दिव्य और भव्य बनाते जाना है। ब्रह्मा बाबा ने इतना पावरफुल अभ्यास किया था, बाबा को झोपड़ी में कोई मिलने के लिए जाता था, सामने बैठता था तो ऐसा अनुभव करता था शांति के प्रवाह में जैसे बह रहा है, शक्ति के प्रवाह में जैसे बह रहा है। देह के भान में आकर बैठा हुआ व्यक्ति खुद भी आत्मा के भान में स्थित हो जाता था। इतना फोर्स आत्माभिमानी स्थिति का बाबा का था। क्यों? क्योंकि लंबे समय का बाबा ने अभ्यास किया। देखो, हम ज्ञान में आते हैं शुरू शुरू में तो इस पर हमें खूब डट के अभ्यास करना है। क्या होता है? हमारा ध्यान मोस्टली सेवा पर होता है, अपने पर जितना होना चाहिए उतना नहीं होता है। जितने भी ब्राह्मण संसार में आत्माएं चमक रही हैं, उनसे अगर प्रश्न पूछेंगे, आप इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाया है, इसका सीक्रेट बताओ, जवाब एक ही मिलेगा, मैंने बाबा के पास आकर ये जो पहला पाठ है आत्मा का पाठ, इसको घोट घोट के, रट रट के, कूट कूट के पक्का किया, तब मैंने इतनी श्रेष्ठ स्थिति बनाई। हर मुरली में बाबा आत्मा समझने का इशारा देते हैं। क्यों भाई? सुप्रीम टीचर हर मुरली में आत्मा समझो दोहराते हैं। क्यों? क्योंकि ये 84 जन्मों का होमवर्क है, एक जन्म का नहीं, 84 जन्मों का होमवर्क है। 63 जन्मों का जो देह का भान आत्मा में कूट कूट कर भरा पड़ा है, उसको हमें हटाना है। एक के जन्म आत्मा का भान नेचुरल रहे उसके हमें जुटाना है, और अभी हमें करना है वो काम। थोड़ा सा समय हमारे पास है, कितना अभ्यास करना होगा आप पूछ सकते हैं। ठीक है, जितना खुद को देख सकते हैं उतना ही खुदा को देख सकते हैं। जितनी खुद की स्मृति रहती है उतनी ही बाबा की खुदा की स्मृति रहती है। आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, आधा सेंटेंस कौन सा है? आत्मा समझ फिर मुझ बाप को याद करो। क्योंकि देह समझते हैं तो हमारी बुद्धि देह की दुनिया में, देह के पदार्थों में ऑटोमेटिक जाती है, और आत्मा समझते ही ट्रैक बदल जाता है, बुद्धि बाबा की तरफ जाने लगती है, है ना? तो हम सभी बहुत महान आत्माएं हैं, है ना कि नहीं है? देखो, याद की यात्रा पर आपको पुरुषार्थ रूपी गाड़ी दौड़ाना है। जब से बाबा के बने हैं तब से इस याद की यात्रा पर पुरुषार्थ की गाड़ी को आपको चलाते रहना है। लेकिन इस गाड़ी को चलाएंगे कैसे, स्टार्ट कैसे करेंगे? हाँ जी, स्टार्ट कैसे करेंगे? स्टार समझते ही गाड़ी स्टार्ट होती है। स्टार नहीं समझेंगे तो गाड़ी स्टार्ट होगी नहीं, घंटों वहीं बैठे रहेंगे, आगे बढ़ेगी नहीं। तो हम कौन है? केवल स्टार नहीं, स्टार तो वो दुनिया में जो फिल्म के होते हैं ना, शारीरिक सुंदरता के आधार पर, वो 3 घंटे की फिल्म वाले और 200 करोड़ कमाने वाले, हम सुपर स्टार है। तालियां तो बजाओ। आत्मा की सुंदरता के आधार पर भगवान ने सिलेक्शन किया है, कोई भिखारी भिखारी ने नहीं किया, स्वयं भगवान ने सिलेक्शन किया हमारा, और करोड़ों में किया, हजारों में लाखों में भी नहीं किया, करोड़ों में किया। तो हम सभी सुपरस्टार हैं और बाबा सुप्रीम स्टार है। आत्मा समझना है, लेकिन आत्मा का अनुभव बहुत अच्छी तरह से आपको करना है तो उसका राज क्या है? स्व माना आत्मा, मान माना महान आत्मा। स्व और मान ये दोनों साथ में अनुभव करेंगे अर्थात समान में स्थित होगेंगे तो आपको आत्मा की अनुभूति इतनी बढ़िया होगी जो बात मत पूछो। स्वमान में रहना और आत्मा का अनुभव करना, ब्रह्मा बाबा शुरू दिन से स्वमान में रहते थे, मैं नारायण बनने वाला हूं, सारे संसार के जो नंबर वन आत्मा नारायण है वो मैं बनने जा रहा हूं, सारे संसार के जो प्रजा है उस प्रजा का मैं पीता हूं, शुरू दिन से नारायणी नशा था, और उसके कारण बाबा ने अपने संपूर्णता के लक्ष्य पर पहुंचे। ये नशा काम करता है। तो आत्मा समझना है लेकिन स्वमान के साथ समझना है तो आत्मा की अनुभूति इतनी होगी जो बात मत पूछो। दुनिया वालों को परमात्मा का अता पता ही नहीं था, उन्होंने संपूर्ण योग की परिभाषा की है, पूर्णतया आत्मा में खो जाना ही संपूर्ण योग है। और बाबा यहां क्या सिखाते हैं? पूर्णतया परमात्म अभिमानी बनना संपूर्ण योग है। ठीक है ना? तो मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं रटना है और अच्छी तरह से अनुभव करना है। ठीक है, मैंने मधुबन में जब मैं 76 में आया, कुछ मास पूरा अच्छी तरह से आत्मा का अभ्यास करा किया, घंटों घंटों एकांत में बैठता था, मैं आत्मा हूँ और आत्मा से शक्तियां जा रही है, प्रवाहित हो रही है, ऐसे गुणों की अनुभूति करता था। और जब किचन में आता था सेवा करने के लिए, मैं आत्मा हूँ और जो भी सामने आता है उसके ब्रुकुटी में मुझे आत्मा ही देखना है। आत्मा का अभ्यास आप 5 साल से 10 साल से कर रहे हैं, आत्मा के अभ्यास में आपकी प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही कैसे पता चलेगा भाई, बताइए। योग सहज लगेगा, बताइए। निरंतर होगा। लिखो आत्मा की 5 स्टेप्स है, उससे आपको पता चलेगा कि कहां खड़ी है आप। पहली स्टेप, आत्मिक स्मृति में टिकना। दूसरी स्टेप, आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाना। तीसरी स्टेज, आत्मिक दृष्टि बनना। आत्मिक स्मृति, आत्मिक स्थिति, आत्मिक दृष्टि। और चौथी स्टेज है आत्मिक वृत्ति, आदत बन जाना, एटीट्यूड ऑफ सोल कॉन्शियसनेस। और पांचवी है आत्मिक कृति, अर्थात कर्म करते हुए भी, कृति अर्थात कर्म करते हुए भी आत्मा के बांध में रहना। और लास्ट है आत्म अभिमानी स्थिति के संस्कार बन जाना। जो संस्कार हम अपने साथ में लेके जाते हैं उसके आधार पर एक के जन्म हम नेचुरल आत्मा के बांध में रहते हैं। अभी हमें पूछना है कौन सी स्टेप पर मैं आत्मा खड़ी हूं। केवल आत्मा नहीं समझना है लेकिन आगे हमें बढ़ना है, ठीक है ना भाई। अभी आत्मा को तो समझ लिया, अभी बाबा को समझना है। बाबा ने कहा है मैं जो हूं जैसा हूं, बहुत थोड़े बच्चे मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं। क्यों भाई बाबा ऐसे कह रहे हैं, हम नहीं जानते हैं इसलिए तो यहां बैठे हैं। लेकिन इतने मेरे ढेर बच्चे हैं, उनों में से थोड़े हैं जो मुझे यथार्थ रीति से जानते हैं, कुछ राज है उसको समझना जरूरी है। इस संसार में केवल ब्रह्मा बाबा की आत्माएं जिन्होंने 100% भगवान को पहचाना है, बाकी आत्माओं ने नंबर वार पहचाना है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे बाबा कैसे हैं, बाबा का स्वरूप कैसा है। जैसे आत्मा ज्योति बिंदु है, परमात्मा का स्वरूप भी ज्योति बिंदु ही है। जैसे बाप का स्वरूप वैसे बेटे का स्वरूप, स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। लेकिन अंतर किस बात में है, जो 7 गुण आत्मा के हैं, उन 7 गुणों के बाबा सागर है, सिंधु है, बिंदु है, लेकिन 7 सिंधु उसमें समाये हुए है। कितनी पावरफुल वो बिंदु होगी आप सोचो जरा, 7 सागर उस बिंदु में है। सारे संसार की रचना का ज्ञान उसके पास है, किसी के पास नहीं है। सारे संसार की रचना को चलाने की ताकत उसके पास है, कितनी वो शक्ति होगी महान। हमने बाबा कह के उसको ऑर्डिनरी बना दिया, वो तो बाबा है, लेकिन बाबा तो है, लेकिन जिसके मुट्ठी में सारा संसार है वो सर्वोच्च सत्ता, वो भगवान है। जब भी बाबा आते हैं स्टेज पर, सिर्फ बाबा का चेहरा देखो, ऐसा लगता है दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हमारे सामने आकर चेहरा बोलता है, अनुभव होता है। आत्मा शांत स्वरूप है, परमात्मा शांति की सागर है, ठीक है। और दूसरी बात, परमात्मा का ही गायन सत्यम शिवम सुंदरम के रूप में है दुनिया में, किसी का गायन ऐसा नहीं है। किसी का सत्यम होगा, किसी का शिवम होगा, किसी का सुंदरम होगा, लेकिन तीनों साथ में किसी का नहीं है। सत्यम अर्थात वो सत्यता के सागर हैं, सारे संसार की आत्माओं को सत्यता की शक्ति प्रदान करते हैं। और इस धरती पर सतियों की दुनिया सत्यता की शक्ति वाली वो लाते हैं,
कितनी सत्यता की शक्ति होगी उनके पास, सबको सत्य स्वरूप में टिकाते हैं, सबको सत्यता की शक्ति प्रदान करते हैं। इसलिए लोगों ने कहा गॉड इज ट्रुथ, ट्रुथ इज गॉड, सत्य ही ईश्वर है, ईश्वर ही सत्य है। हम तो सत्ययुग में सत्य रहते थे, बाद में द्वापर युग में झूठ बोलना, झूठ का सहारा लेना शुरू किया। एक ही संसार में बाबा सदा सत्य है। दूसरी बात, शिवम अर्थात कल्याणकारी है, सबके कल्याणकारी है, बेहद के कल्याणकारी है, वो कल्याण के सागर हैं। किसी कोई हमारी ग्लानी करता है तो उसके प्रति हमारी कल्याण की भावना होती नहीं है। हमने केवल गालियां दी बाबा को द्वापर युग से, केवल गालियां दी, तुम कुत्ते में हो, तुम सुअर में हो, तुम गधे में हो। आपको कोई कहे ना तुम कुत्ते में हो, पट से गुस्सा है, कुत्ते में बताऊं? द्वापर युग से केवल हमने गालियां दी, फिर भी वो रहम का सागर बाबा रहम करने आया है, बेहद का कल्याण कर। इस संसार में सबसे जास्ती कल्याण करने वाला मेरा एक बाबा है, दूसरा कोई भी नहीं, सारे हैं हद के कल्याणकारी। कोई मेहमान घर में आता है तीसरे दिन के बाद में पूछते, भाई टिकट कब का है? अरे भाई बताओ, अभी तो आया है, दो दिन तीन दिन भी नहीं। तो कहने का मतलब है वो कल्याण का सागर है। और सुंदरम अर्थात सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने का ठेका लिया है उसने, सुंदरता का वो सागर है। सभी आत्माओं पर ब्लैक स्पॉट्स ऑफ इंप्यूरिटीज हैं, उस ब्लैक स्पॉट्स को निकालने के लिए हर प्रकार की साधना करते हैं। सारे संसार की आत्माओं को सुंदर बनाने वाला कितना सुंदर होगा भाई, बोलो तो सही, देखो तो सही। सुंदरता का सागर है, बहुत सुंदर चीज होती है ना, उसको देख के दिल भरती नहीं है, ऐसा लगता है बस देखते रहे देखते रहे देखते रहे। तो योगी अर्थात प्रभु के पागल प्रेमी, जो योगियों का प्रेम भगवान के साथ होता है किसी का नहीं होता है, दीवाने होते हैं। दादियां, जानकी दादी जी, प्रकाशमणि दादी जी बाबा को मिलती, सारी सभा देख रही है, बाबा उनको बाहों में समा रहे हैं। क्या है दादियों के पास? कोई डिग्री नहीं है, कोई पर्सनालिटी नहीं है, लेकिन खुदा उन पर फिदा है। क्या? उनके पास रग रग में केवल परमात्म प्यार है और कुछ भी नहीं है। उन्होंने परमात्मा को यथार्थ रीति से पहचाना है, सुंदरता के सागर पर वो फिदा है, सुना? तो बाबा हमारे बुद्धि रूपी नेत्र के सामने सदा दिखाई दे और उसकी सुंदरता को एंजॉय करे। योग है क्या? भगवान से प्यार करना, इसी को तो योग कहते, और है क्या योग? सारे कल्प में हमने देहधारियों से योग प्यार किया, प्यार लिया दिया। अभी बाबा कहते हैं निराकारी समझ के आत्मा मुझसे प्यार करो, वो थोड़ा कठिन लगता है, लेकिन अगर वो कला हम अच्छी तरह से समझते हैं तो कोई बड़ी बात ही नहीं है। वो कला समझना है और उस कला को हमें डेवलप करना है। तो बाबा को पहचानना अर्थात बाबा के स्वरूप को जानना, बाबा की विशेषताओं को जानना, बाबा के गुणों को जानना, बाबा की क्षमता को जानना, ऑल राउंड पर्सनालिटी को जानने को कहेंगे भगवान को पहचानना। ठीक है, अभी भगवान को जितना हम पहचानते हैं, जितना हम पहचानते हैं उतना ही दिल का प्यार उनके तरफ ट्रांसफर करते हैं, जितना पहचानते उतने, क्योंकि हमारे पास कुछ नहीं है, फकीर हैं, ये बेघर, ये घर भी किराए से लिया है, हमारा नहीं है, बेघर माना बेघर, प्रकृति से पांच तत्वों से किराया से लिया हुआ है। क्या है हमारे पास? केवल
थोड़ी सी सच्चे प्यार की, दिल के प्यार की पूंजी हमारे पास बची है और कुछ भी नहीं है। सुदामा के पास क्या था? मुट्ठी चावल। ये सारे सुदामा बैठे हैं यहां, कुछ नहीं है, केवल थोड़ी सी दिल का प्यार की सच्ची पूंजी है। बाबा कहते हैं मैं केवल प्यार का सौदागर हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके पास है क्या जो मुझे दोगे? मैं केवल सौदा आया करने के लिए प्यार का। करोगे भाई? बोलो हाँ, पूछ रहा है बाबा, बोलो ना, करोगे? पक्की बात? पक्की बात है? बाबा कहते मैं पक्का सौदा करूं, जितना प्यार मुझसे करोगे उतना ही मैं आपसे करूंगा, थोड़ा सा भी कम जास्ती नहीं होगा। बोलो भाई, करोगे? क्यों, ये बहन ही कहती इसलिए करना है क्या? ब्रह्मा कुमारी कहती इसलिए करना है क्या? हमारे पास भी तो महसूसता होनी चाहिए ना। लिखो पांच बातें, क्यों हमने भगवान के साथ प्यार करना है, क्यों किसी व्यक्ति वैभव के साथ प्यार को शेयर नहीं करना है, ये हमारे पास रियलाइजेशन होना चाहिए, तब हम दिल का प्यार उसके तरफ ट्रांसफर करेंगे। पहली बात, केवल परमात्म प्यार ही बेहद का प्यार है, आत्माओं का प्यार हद का है, परमात्मा का प्यार बेहद का है, अविनाशी है, सदा काल का है, आत्माओं का प्यार तो हद का है। दूसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही अनकंडीशनल है, अनकॉम्प्लिकेटेड है। आत्माओं के प्यार में कितनी कंडीशंस, कितनी कॉम्प्लिकेशंस है, भगवान के प्यार में कोई कंडीशन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इसलिए उसको भोला नाथ कहते हैं। तीसरी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है, आत्माओं का प्यार हमें इम्प्योर बनाता है। भी आत्मा भी इम्प्योर है, शरीर भी इम्प्योर है, प्यार करेंगे तो इम्प्योर ही बनेंगे ना। केवल परमात्म प्यार ही हमें प्योर बनाता है। चौथी बात, केवल परमात्म प्यार ही हमें इस दुनिया से पार ले जाता है, आत्माओं का प्यार तो हमें इसी घटिया दुनिया में भटकाता रहता है, मटकाता रहता है, इधर ही घूमत। परमात्म प्यार हमें इस दुनिया से पार ले जाता है, होलीएस्ट और हाईएस्ट स्थान पर ले जाता है। टॉप क्वालिटी की आत्माएं होती है ना, वो टॉप फ्लोर पर रहती है। परमात्म प्यार हमें दुनिया से पार ले जाता है, ठीक है ना। और प्यार ही हमें प्योर बनाता है, अनकंडीशनल है, अनकॉम्प्लिकेटेड है। परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार है। इस दुनिया में स्वार्थ के बिना कोई किसी से प्यार ही नहीं करता है। दिखाओ कोई, कोई भी नहीं है। प्यार करने वाला कहता है मैं प्यार करूंगा तो मिलेगा क्या मुझे इससे। केवल परमात्म प्यार ही निस्वार्थ प्यार करता है ना, कोई स्वार्थ नहीं। कहते मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स, कितना अंतर है भाई। मैन गेट एंड फॉरगेट, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। इसलिए मुझे परमात्मा से ही प्यार करना है, और जितना प्यार बढ़ता है उतना बुद्धि की तार हमारी बाबा के साथ में जुड़ जाती है। जहां प्यार वहां बुद्धि की तार जोड़ देनी पड़ती है, जुट जाती है। जैसा प्यार वैसी वो बुद्धि की तार जुड़ जाती है। जितना प्यार उतनी देर तक वो तार हमारी जुटी रहती है।
क्योंकि प्यार एक ऐसी चुंबकीय शक्ति है, ऐसी मैग्नेटिक पावर है जो आत्मा और परमात्मा में हजारों मीलों की दूरी है, उस मीलों की दूरी को एकदम समाप्त करके आमने सामने मुलाकात की अनुभूति ये प्यार की शक्ति कराती है। इसलिए हमारे दिल में केवल परमात्म प्यार का झरना निरंतर बहता रहे। संगम माना केवल परमात्मा के संग में रहना, भगवान के साथ प्यार का सौदा करना। सारा कलप आत्माओं के साथ किया, केवल संगम युग में परमात्मा के साथ हमें करना है, है ना? तो इसलिए हमें बस बाबा से प्यार कैसे करें ये कला हमारे पास होनी चाहिए। बस ये इस कला को हमें डेवलप करना है। कहते हैं इस संसार में सबसे बड़ी कला है, कलाकार तो दुनिया में एक से एक बढ़कर हैं, लेकिन सबसे बड़ी कला कौन सी है? मन को प्रभु में लगाना। इससे बढ़कर और कोई कला नहीं है दुनिया में। क्यों भाई सबसे बड़ी है? क्योंकि यही कला हमें 16 कला संपूर्ण बनाती है, और कोई दूसरी कला हमें संपूर्ण नहीं बनाती है। सर्व कला से संपूर्ण बनाती है यही कला। तो अभी हमें बाबा के साथ कनेक्शन जोड़ना है। कनेक्शन है तो शक्तियों का कलेक्शन होगा, कनेक्शन नहीं तो कलेक्शन भी नहीं। बैटरी में शक्तियां ही जमा नहीं होगी, कहां से कलेक्शन नहीं होगा तो बैटरी चार्ज कैसे होगी भाई? योग लगाना माना आत्मा की बैटरी चार्ज करना। अब कितने साल से बैटरी चार्ज कर रहे भाई? हैं जी, अच्छा कितने साल से कर रहे बताओ? 10 साल से, 20 साल से, 12 साल से, अभी तक बैटरी चार्ज नहीं हुई। मोबाइल की बैटरी 2 घंटे में हो जाती, ये बैटरी कितने साल लगते? क्यों? क्योंकि जितना शक्तियां जमा करते हैं उतनी खर्च हो जाती है। इसलिए बाबा ने इशारा दिया है अभी शक्तिशाली योगाभ्यास करने का समय चल रहा है, साधारण योगाभ्यास करने का समय समाप्त हो चुका है, नहीं काम चलेगा। जो होशियार बिजनेसमैन होता है ना, वो 3 बातें चेक करता है, कितनी मेरी अर्निंग है, अर्निंग मेरी मैक्सिमम हो, कितनी मेरी स्पेंडिंग है, स्पेंडिंग मेरी मिनिमम हो, तो सेविंग मेरी मैक्सिमम होगी। तो जमा करने का समय ये शक्तियों का है, खर्च करने का नहीं है। इसलिए कनेक्शन बाबा से जोड़ते हैं तो शक्तिशाली योग हमारा हो, ज्वालामुखी योग हमारा होगा, तो बाबा से बहुत शक्तियां हम जमा करते जाएंगे और आत्मा की बैटरी तेजी से चार्ज होती रहेंगे, है ना? अभी बाबा के साथ कनेक्शन आपको अच्छी तरह से जोड़ना है, और कनेक्शन टूटे नहीं ये अगर आप चाहते हैं, चाहता तो हर कोई है, ये चाहते हैं तो मन बुद्धि के बारे में 5 बातें आपको जानना है। मैं गारंटी देता हूं आपका योगाभ्यास सदा आगे ही आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि योगाभ्यास में मन और बुद्धि इन दोनों शक्तियों का प्रयोग किया जाता है। इन दोनों शक्तियों के बारे में अगर आपके पास डिटेल जानकारी है तो आप योग में मास्टरी लेंगे, गारंटी है। पहली बात, मन मेरा कैसा हो, बुद्धि मेरी कैसी हो। मन मेरा शांत हो, शीतल हो और हल्का हो। कैसा हो? शांत हो, शीतल हो और हल्का हो। ऐसा मन मन मना भव का मंत्र का जाप करता ही रहेगा, थकेगा ही नहीं। शांत, शीतल और हल्का, थोड़ा सा भी बोझ अगर उस पर है तो काम करना छोड़ देगा। तो मन को सारे दिन भर में हमने कैसा रखना है? शांत रखना है, शीतल रखना है और हल्का रखना है। ये बच्चा है आत्मा रूपी मां का, ये दोनों बच्चे हैं, इनको हमें संभाल करना है बच्चों की। बुद्धि कैसी हो? बुद्धि एक्टिव हो, अलर्ट हो और फ्रेश हो। एक्टिव, अलर्ट, फ्रेश, ऐसी बुद्धि निरंतर योगाभ्यास में काम करती ही रहती है, क्योंकि योगाभ्यास में बुद्धि का रोल मेन रोल है, मेजर रोल है। इसलिए बुद्धि अगर एक्टिव, अलर्ट, फ्रेश है तो वो निरंतर काम करती रहेगी और आपका कनेक्शन बाबा से जुटा रहेगा और आपकी कमाई होती जाएगी। ठीक है। दूसरी बात, इन दोनों शक्तियों में अंतर क्या है? क्योंकि लोगों का इसमें कन्फ्यूजन होता है, मन और बुद्धि में कन्फ्यूजन होता है, तो इसमें अंतर क्या है? जैसे मेरा हाथ ये है, मेरा ये पैर है, शरीर के ऑर्गन्स हमें स्पष्ट अंतर दिखाई देता है, ऐसे आत्मा की जो ऑर्गन्स है उसमें भी अंतर स्पष्ट दिखाई देना चाहिए, अनुभव होना चाहिए। तो बुद्धि के चार काम हैं। पहला काम है बुद्धि देखती है, देखने का काम बुद्धि करती है। बुद्धि रूपी नेत्र, हम यहां बैठे हैं लेकिन हमारे नेत्र इधर उधर भटकता रहता है, देखता रहता है, अहमदाबाद में ये हो रहा है, ये बात हो रहा है, आपको याद कोई कर रहा है, बैठे यहां है, बुद्धि कहां कहां जाती है। देखना पहला काम। दूसरा काम निर्णय करना। हमेशा बुद्धि निर्णय लेती है, मन सोचते हैं और निर्णय लेने वाली बुद्धि होती है। जितनी बुद्धि दिव्य बनती है, सालिम बनती है, उतनी निर्णय शक्ति हमारी शार्प होती है, बहुत अच्छी तरह से डेवलप होती है। तीसरा काम है बुद्धि का मेमोरी का काम बुद्धि करती है। 10 साल पुरानी बात भारती दीदी जी बता रही थी, आप लोटस हाउस में आए थे, आपको याद है हमने बहुत अच्छी तरह से आपको गुजराती भोजन खिलाया था। अब 10 साल पुरानी बात कहां छिपा के रखी भाई? मेमोरी में, बुद्धि रूपी मेमोरी में। तो जितनी बुद्धि दिव्य बनती है ना, उतनी मेमोरी पावर बढ़ती है। बाबा के बच्चों की मेमोरी पावर बहुत अच्छी होती है, इसलिए पढ़ाई में भी नंबर आगे लेते हैं। ठीक है। चौथी बात ध्यान से सुनना, चौथी बात, आत्मा का दिल बुद्धि कहलाती है। बाबा कहते दिल में मुझे बिठाओ, अभी है कहां वो दिल? जब भी दिल की बात आती है ना, हमारा हाथ यहां जाता, मैं दिल से कह रहा, ये दिल है क्या? ये तो हार्ट है, शरीर का पार्ट है, ब्लड को पंपिंग करता है। लेकिन बुद्धि दिल का, आत्मा का, दिल का काम करती है। कैसे? पांडव प्रीत बुद्धि थे, कौरव विपरीत बुद्धि थे। विपरीत माना उनके बुद्धि में परमात्मा के प्रति प्यार नहीं था, पांडव के दिल में परमात्मा के बुद्धि में, उनके बुद्धि में प्यार था। कहते हाथ काटे दिल यार्डे, हाथ से काम करो दिल से याद को, कौन सा दिल? बुद्धि रूपी दिल। तो बाबा के दिल में बैठना माना ऐसा कुछ काम करना, ऐसी कुछ सेवा करना जो बाबा हमें अपनी बुद्धि में बिठा दे। अमृत वेले सारा संसार भगवान को याद करता है, लेकिन हम ऐसा काम करें जो भगवान हमें याद करे, भगवान हमें दिल में बिठा दे, तो इससे बढ़कर कोई है ऊंचा नहीं। और पांचवा काम है बुद्धि चित्त का भी काम करती है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो कहते हैं, हे देवी जी मेरी कमी अपने चित्त पर नहीं रखना, मुझे माफ करना, वो चित्त कहां है? बुद्धि है। कोई भी सामने आता है उसकी कमी हमें दिखाई देती है, वो बुद्धि में आती है। अच्छाई दिखाई देती है, बुद्धि चित्त का काम करती है। तो कहने का मतलब है ऐसे 4-5 काम बुद्धि करती है। इसलिए कहते जैसी बुद्धि वैसी आत्मा की शुद्धि होती है, जैसी आत्मा की शुद्धि वैसे खजानों की वृद्धि होती है, जैसे खजानों की वृद्धि वैसे आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती है, और जैसे आत्मा सिद्धि स्वरूप बनती है वैसे वो अपनी संपूर्णता की ओर आगे बढ़ती जाती है। लेकिन शुरुआत कहां से हुई? बुद्धि से। ठीक है, एक कितनी बार हो गई, दूसरी बात हो गई, तीसरी, मन और बुद्धि की, नहीं बुद्धि की, मन बुद्धि की दूसरी बात, तीसरी बात, मन बुद्धि में आपस में क्या रिलेशन है। अब साथ में रहेगी तो कुछ तो रिलेशन है ना, अब ये दो माता है ना, वो साथ साथ बैठी है, मैं उनको पूछा भाई साथ साथ सवेरे से क्यों पीछे भागती है, कहते वो मेरी देरानी है, मैं उसकी जेठानी हूं, तो जरा बात सही है भाई। तो मन और बुद्धि साथ में रहती, कुछ तो रिश्ता होगा ना, तो बुद्धि मन का बॉस है, बुद्धि मन का कंट्रोलर है, बुद्धि मन का प्लानर है, बुद्धि मन का डायरेक्टर है, बुद्धि ही होल एंड सोल है, बॉस है, कंट्रोलर है, डायरेक्टर है, इंडिकेटर है, और मन केवल उसका फॉलोअर है, जहां जाता है बुद्धि उसके पीछे मन जाता है, बस ये उनका रिलेशन है, क्योंकि बॉस के पीछे जाएगा ना मन। तो इसलिए अगर हमें मन को कंट्रोल करना है तो मन को कंट्रोल करने का पुरुषार्थ करना ही नहीं, उसके बॉस को पकड़ना है, बुद्धि को, बुद्धि को पकड़ना माना किसी न किसी बात में उसको बिजी रखना, किसी ऑब्जेक्ट पर उसको फोकस करना, कहीं मन जाएगा ही नहीं आपका, क्योंकि बुद्धि आपके कंट्रोल में है, ये उनका रिलेशन है। ठीक है, चौथी बात, इन दोनों शक्तियों को योगाभ्यास में कैसे यूज करें, ये हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए। जब भी हम योग में बैठते हैं, आत्मिक स्थिति में हमें बैठना है, और सबसे पहले बुद्धि रूपी नेत्र को परम धाम में शिव बाबा पर, या सूक्ष्म अवतन में ब्रह्मा बाबा के भ्रुकुटी में शिव बाबा पर एकाग्र करना है। बुद्धि से बाबा को देखना माना बाबा से कनेक्शन जुट जाना, सिंपल बात है। अभी यहां बैठी है, ये मम्मी को देख रही है घर में, माना मम्मी से कनेक्शन है, और बुद्धि परम धाम में या सूक्ष्मोतन में बाबा को देखते तो किससे कनेक्शन है, बाबा से कनेक्शन है। और ये नियम है, बुद्धि जिसको देखती है मन उसी पर सोचता है, दूसरा कोई सोच ही नहीं सकता है। ठीक है, अभी बाबा पर हमें बुद्धि को फोकस करना है, तो लंबे समय तक हमारी बुद्धि बाबा पर टिकी हुई रहे उसके लिए क्या करना है, बुद्धि को वॉच करना है, कैच करना है और मैच करना है। पहले वॉच करो, बुद्धि रूपी नेत्र कहां है, बाबा पर है या कहीं और भटक रहा है, वॉच करो, उसको कैच करो, पकड़ के लाओ और उसको मैच करो, बाबा पर बिठा दो, एक सेकंड में आपको कनेक्शन मिलेगा, दूसरा सेकंड नहीं लगेगा, एक सेकंड में कनेक्शन मिलेगा, क्योंकि हमारा अंतिम पेपर जो है ना सेकंड का ही है, देह से न्यारा और बाबा का प्यारा, बस हमारे और बाबा के बीच में एक छोटी सी दीवार है देह के भान की, इस दीवार को हटा दो तो बाबा के साथ में कंबाइन अनुभव करेंगे। इसलिए कहते हैं जितना देह से न्यारे उतना बाबा के उतना ही, जितना उतना। तो हमें क्या करना है, देह में रहते हुए देह से न्यारा होने का पुरुषार्थ करना है। ठीक है, पांचवी बात, इन दोनों शक्तियों को हमें सारे दिन भर में माया दुश्मन से सेफ रखना है, क्योंकि ये हमारा राज नहीं है, ये दुश्मन का राज है। बाबा ने बड़ा कठिन काम दिया है, रहो दुश्मन के राज में और प्रॉपर्टी भी दुश्मन के साथ में, माया के विकारों के अंश वंश और नई दुनिया स्थापन करना है, कितना कठिन काम है भाई। लेकिन भगवान हमारे साथ है, वो हमें युक्तियां बताते हैं, वो बिल्कुल सहज हो जाता है। तो क्या करना है, मन और बुद्धि को सेफ रखना है, और उसके लिए बहुत अच्छी युक्ति है। जब बाबा के घर में जाते हैं, सेंटर पर जाते हैं, मुरली सुनते हैं, योग करते हैं, तो ईश्वरीय नशे की अनुभूति होती है। ईश्वरीय नशे का कवच हमको सारे दिन भर में पहनकर रखना है। ईश्वरीय नशे का कवच पहनकर रखेंगे तो माया दुश्मन वार नहीं करेगी, अगर करेगी तो भी उसका कोई असर नहीं होगा। एक कवच पहनना है, समझा? ईश्वरीय नशे का कवच पहना हुआ होगा ना तो माया के प्रलोभन आपको अपने तरफ आकर्षित कर ही नहीं सकते। इसलिए कहते हैं जितना ईश्वरीय नशे में चूर उतना इस दुनिया से दूर, बस नशे में मस्त रहे, मस्ती मस्ती चढ़ी रहे। कहते हैं जितनी बड़ी हस्ती उतनी बड़ी, भाई दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती हमें मिली है तो कितनी मस्ती होनी चाहिए, सबसे जास्ती मस्ती होनी चाहिए। तो नशे में हम रहेंगे ना तो ऑटोमेटिक आप देखना, आप एक घटिया दुनिया में आपकी बुद्धि होगी नहीं, एकदम ऊपर बाबा के पास, ऊपर वाले राम को याद करना है तो ऊपर राम बनना है, न्यारे बनना है, ईश्वरीय नशे का कवच पहनना है। ये दुनिया हमारे लिए नहीं है, हमारी दुनिया अलौकिक दुनिया है, सूक्ष्म वतन है, परम धाम है, सतयुग दुनिया आएगी। तो कुछ भी हो इस कवच को आपको छोड़ना नहीं है। देखो ठंडी लग रही है, आप शाल पहन के बैठे हैं, स्वेटर पहने, ठंडी से आपका बचाव हो रहा है। तो ऐसे माया का बचाव होने के लिए क्या करना है, आत्मा को ईश्वरीय नशे का कवच पहनाना है और उतारना नहीं, उसको सारे दिन भर में पहन कर रखना है। उसके लिए क्या करना है, समान के सिंहासन पर हमें डटे रहना है, बैठे रहना है, सिंहासन को नहीं छोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। भगवान ने ये सोमान का सिंहासन दिया है क्योंकि ये बहुत प्राप्तियां कराने वाला सिंहासन है, इसलिए हमें इसको छोड़ना नहीं है। कोई एमपी एमएलए बनता है छोड़ता है सिंहासन, माल बटोरता रहता है। तो हमें भगवान ने ये दिया है सिंहासन, बड़ी मुश्किल से दिया है, 63 जन्म हमने क्या नहीं मेहनत किया है, भगवान जी खुश हो गए, लो बच्चे तुम्हारे सौगात। तो मैं आत्मा कोई ना कोई सोमान के सिंहासन पर सदा स्थित रहूं, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी सिंहासन है, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूं, माना आप उसमें बैठ गए, बैठ गए तो आपका चेहरे पर वो नशा ऑटोमेटिक होगा। सोचना विश्व कल्याण के लिए, बोलना विश्व कल्याण के लिए, कर्म करना विश्व कल्याण के लिए, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूं, कोई ना कोई टाइटल हमें साथ में आत्मा को बनाना है, बांधना है, क्योंकि हम बहुत बड़े लोग हैं, हम कोई ऑर्डिनरी नहीं है। यहां बैठे जो भी है ना, बहुत रॉयल आत्माएं हैं, होनहार सतयुग में राजे महाराजे बनने वाले हैं। अभी सिंपल है, लेकिन सिंपल से वो सैंपल कैसे बनेंगे, इतने ऊंचे कैसे बनेंगे, इस सिंहासन पर बैठकर। मोदी जी देखो सिंपल घर से है ना, लेकिन सिंहासन बैठा बिरला, भारत का प्राइम मिनिस्टर। तो विदेश में जाते हैं उनका चेहरा देखो, मैं भारत का प्राइम मिनिस्टर हूं, बिल्कुल है, क्योंकि सीट मिली है, सिंहासन मिला है। तो भगवान ने हमें इतना बड़ा सिंहासन दिया है, उसको हमें माया कितना भी अपोजिशन करे नहीं छोड़ना है। ठीक है भाई, तो बातें तो बहुत हैं, अभी यहां हम ये करते हैं, 5 बातें मन बुद्धि की हो गई। तो अभी हम बहुत सुंदर आधा घंटा 7:45 तक बिल्कुल गहन अनुभूति योग की करेंगे। ठीक है दीदी, ठीक है ना, चलो सभी चुस्त और मस्त होके बैठेंगे। सीधा ऐसे सीधा बैठेंगे, पीठ की रीढ़ की हड्डी सीधी हो। ओम शांति। इस देह रूपी मकान में मैं निराकार ज्योति बिंदु
आत्मा, मकान, मालिक। आंखों रूपी खिड़कियों के पास भ्रुकुटी के काल तख्त पर विराजमान हो। मैं आत्मा, मकान, मालिक, ज्योति बिंदु चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। मोस ज्योति बिंदु आत्मा से दिव्यता का प्रकाश, चारों ओर फैल रहा है। बहुत सुंदर दिव्य प्रकाश का आभा मंडल, मस आत्मा के चौ ओर अनुभव हो रहा है। मैं पवित्र स्वरूप ज्योति बिंदु आत्मा हूं। पवित्रता का सुंदर ताज, मुझ आत्मा ने धारण किया है। परम आनंद की अनुभूति हो रही है। खुश नसीब आत्मा हूं। जो अपने सत्य स्वरूप को निराकारी स्वरूप को दिव्य स्वरूप को दिव्य चक्षु से देख रही हूं और अनुभव भी कर रही हूं। भगवान की नजरों में आई हुई मैं भाग्यवान आत्मा हूं। भाग्य विधाता भगवान हर रोज मेरे भाग्य के गीत, मुरली में गाते ही रहते हैं। मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी आत्मा हूं। मैं आत्मा राजा विश्व कल्याणकारी सिंहासन पर बैठकर और सूक्ष्म कर्मेंद्रियों पर नियंत्रण और अनुशासन करते हुए स्वराज अधिकारी स्थिति की अनुभूति कर रहा हूं। मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, देह से न्यारी होकर दिव्य बुद्धि रूपी विमान में बैठकर तीनों लोगों की सैर करने जा रही हूं। इस विश्व के गोले से पार चंद्र सूर्य तारा गण से भी पार उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, फरिश्तों की दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी सुंदर है यह फरिश्तों की दुनिया, चारों सफेद ही सफेद दिव्या प्रकाश ही प्रकाश है। मुझ निराकार ज्योति बिंदु आत्मा ने दिव्य प्रकाश पुंज की चमकीली फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस धारण कर ली है। कितनी हल्की फुल्की सुंदर ड्रेस है यह, फरिश्तों के राजा प्यारे ब्रह्मा बाबा अपने दिव्य और भव्य संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप में मेरे समक्ष विराजमान है। मेरे अति प्यारे, अति मीठे शिव बाबुल भी उनके भ्रुकुटी में चमचमाते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्नेह के सागर बाबा मुझे अति स्नेह भरी दृष्टि दे रहे हैं। स्नेह सागर की लहरें ब्रह्मा बाबा के नेत्र मार्ग से मुझ फरिश्ते की ओर प्रवाहित हो रही है। मैं फरिश्ता स्नेह सागर की लहरों में बाबा के
की बाहों के झूले में झूल रहा हूं, झूलता ही जा रहा हूं। बाबा की बाहों में समा गया हूं, बाबा के नैनों में स्नेह के मोती चमक रहे हैं। चिकिले दे बच्चे, मैं बेहद खुश हूं, मैंने अपना खोया हुआ लाल 5000 वर्षों बाद पाया है, मैं बेहद खुश हूं। लाडले बच्चे, जो भक्ति मार्ग में गाते थे त्वमेव माता च पिता त्वमेव, वो वायदा निभाने में आया हूं। इस फरिश्तों की नगरी में जब चाहो जिस भी संबंध की अनुभूति करना चाहो मुझसे करते रहो। लाडले बच्चे, कभी मुझे पिता के रूप में अनुभव करो, मेरे गोदी में बैठो, मेरी गोदी में खेलो। पिता का निस्वार्थ प्यार मुझसे अनुभव करो। प्यारे बच्चे, कभी मुझे परम शिक्षक के रूप में अनुभव करो, मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि निराकार भगवान साकार रूप में आकर मुझे पढ़ाई पढ़ाएंगे, कभी नहीं सोचा। वो हर रोज दूर देश से आकर मुरली द्वारा मुझे ज्ञान के गुह्यराज बड़े प्यार से समझाते हैं। अमूल्य ज्ञान रत्नों से मेरी बुद्धि रूपी झोली भर देते हैं, जिससे मेरी बुद्धि दिव्य और दुरंदेशी बनती जा रही है। प्यारे बच्चे, कभी मुझे परम सद्गुरु के रूप में अनुभव करो, मेरी वरदानी दृष्टि से अनेक वरदान प्राप्त करते रहो। मेरा वरद हस्त सदा अपने माथे पर अनुभव करो, जाए दिन भर, मेरी ही छत्र छाया में चलते रहो पलते रहो। कभी मुझे दोस्त के रूप में अनुभव करो, सचमुच मैं कितनी नसीबवान आत्मा हूं। जो डायरेक्ट भगवान के साथ विभिन्न संबंधों की अनुभूति करते हुए स्वयं को परमात्म प्यार से भरपूर कर रही हूं, फरिश्ता स्वरूप की ड्रेस को छोड़कर मैं निराकार ज्योति बिंदु आत्मा पुनः बुद्धि रूपी विमान में बैठकर निराकारी दुनिया की ओर उड़ती हुई जा रही हूं, जा रही हूं। ओहो, निराकारी दुनिया में पहुंच गई हूं। कितनी न्यारी प्यारी निराकारी दुनिया है यहां, दिव्य प्रकाश प्रकाश है, शांति ही शांति है। कितना प्यारा घर है यह मेरा, परम धाम स्वीट साइलेंस हो। मेरे प्राणों के प्राण, मेरी प्राण आधार, मेरी प्राणेश्वर, मेरे प्राण पिता, सत्यम शिवम सुंदरम। मुझ आत्म ज्योति के समक्ष विराजमान है, मैं आत्म ज्योति अपनी दिव्य चक्षु से बाबा की सुंदर छवि को निहार रही हूं, उनकी सुंदरता का आनंद ले रही हूं। बाबा मेरे नैनों के नूर बन चुके हैं, मेरे दिल की दुनिया में मेरे दिलवर मेरे दिलाराम बाबा ही बाबा है, बस बाबा ही बाबा है। बाबा मेरे सलोने शिव साजन है, मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन को देख रही हूं, जी भर के देख रही हूं। मेरे दिल में शिव साजन के प्यार का झरना निरंतर बह रहा है, मेरी सलोनी शिव साजन मुझ आत्मा रूपी सजनी को दिव्य गुणों के आभूषणों से सजाते रहते हैं। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने सलोनी शिव साजन के समीप जा रही हूं, अति समीप पहुंच गई हूं और उनकी लाइट और माइट रूपी बाहों में समा चुकी हूं। प्यार के सागर के तले में डूब चुकी हूं, कंबाइंड हो चुकी हूं, शिव मैं बन चुकी हूं, खुदा पर फिदा हो चुकी हूं। दुनिया की कोई भी शक्ति मुझे खुदा से जुदा नहीं कर सकती, मैं कंबाइंड हो चुकी हूं। मेरे सलोने शिव साजन एक तरफ अथाह प्यार के सागर हैं, तो दूसरे तरफ अथाह शक्तियों के सागर भी है, ज्ञान सूर्य है, आध्यात्मिक शक्तियों के प्रचंड स्रोत हैं। शक्तियों के सागर ज्ञान सूर्य शिव से साजन से अत्यंत शक्तिशाली किरणों की मूसलाधार वर्षा मुझ आत्म सजनी पर हो रही है, होती ही जा रही है। मैं आत्मा रूपी सजनी अपने शिव साजन से अनंत शक्तियां असीम शक्तियां स्वयं में ग्रहण कर रही हूं, ग्रहण करती ही जा रही, और योग की प्रखर अग्नि में मेरे पूर्व जन्मों के पाप पालाभार में भस्म हो रहे हैं। मैं आत्मा सजनी स्वयं को एकदम हल्की फुल्की अनुभव कर रही हूं। सचमुच मेरे जीवन के सबसे खुशनों में पल है यह, सुनहरे पल है यह, जो मैं आत्म ज्योति डायरेक्ट महा ज्योति भगवान के सानिध्य में स्वयं को अनुभव कर रही हूं। वहां मेरे बाबा, वहां मेरा भाग्य, शक्तियों से भरपूर आत्मा निराकारी दुनिया से वापिस बुद्धि बल से वाया सूक्ष्म वतन साकारी दुनिया की ओर आ रही हूं, और इस साकारी चैतन्य शरीर रूपी मकान में प्रकृति के अकाल तख्त पर विराजमान हो चुके हैं। मज शक्तिशाली आत्मा से शक्तियों की सजीव तरंगे इस वायुमंडल में चार ओर फैल रहे हैं, वायुमंडल को प्रकंपित करके शक्तिशाली बना रहे हैं। मेरे भ्रुकुटी में मस्तक मणि आत्मा चमक रही है, अष्ट शक्तियों की चमक चारों फैल रही है। जैसे मेरे शिव पिता निराकार ज्योति बिंदु है, वैसे मैं आत्मा उनकी संतान भी निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ, निराकार ज्योति बिंदु हूँ।